ओम शांति। हम सभी हमारे बीच में पधारे हुए भ्राता डॉक्टर बनारसी जी का एक हाथ की ताली से स्वागत करते हैं। भ्राता जी के परिचय में आप सबको बताने जा रही हूं कि आपने होम्योपैथी में डॉक्टर डिग्री 1973 में हासिल की। इसके पश्चात ब्रह्मा कुमारी के अंदर अपने जीवन को समर्पित करके ईश्वरीय सेवाएं देने आए गए और 1985 से राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के मेडिकल विंग के आप सचिव हैं। ब्रह्मा कुमारीज के शांतिवन परिसर के हेल्थ केयर सेंटर और एवर हेल्दी हॉस्पिटल के आप निर्देशक हैं। ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर माउंट आबू के ट्रस्टी हैं। आपने पूरे भारत में कई स्वास्थ्य अभियान आयोजित किए, जैसे कि मेरा भारत, स्वस्थ भारत, स्वास्थ्य जागरूकता अभियान एक्ट। भारत के कई प्रमुख शहरों और गांवों में नशीली दवाओं के दुरुपयोग से निपटने के लिए कई बड़ी संख्या में सेमिनार या प्रदर्शनियां भी आपके द्वारा आयोजित की गई। आपने समाज की बेहतरीनता के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जागरूकता के उद्देश्य को बढ़ावा देने में आपको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स इंग्लैंड और वेल्स द्वारा आदित्य पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। तो अभी हमारा परम सौभाग्य है कि इतनी श्रेष्ठ विभूति हम सबके बीच में विराजमान है और आज हम हमारे भ्राता जी के मुखारविंद के द्वारा अपने जीवन को और श्रेष्ठ बनाने के लिए, अपने ब्राह्मण जीवन में और तरक्की प्राप्त करने के लिए भ्राता जी के द्वारा, उनके मुखिन द्वारा हम ज्ञान के विशेष बातें जो है सुनेंगे। ओम शांति।
थैंक यू दीदी। ओम शांति। टॉपिक है अमृत वेले का महत्व। चारों युगों में अमृत वेले का महत्व अलग अलग ढंग से बताया गया है और चारों युग में अमृत वेले का महत्व है। आप कहेंगे कि भाई सतयुग में अमृत वेले का क्या महत्व है, सतयुग में तो सब सतो प्रधान है, देवताएं हैं, वो अमृत वेले उठ करके किससे योग करेंगे, क्या करेंगे। एक बार हम लोगों ने गुलजार दादी से रू रियान कर रहे थे तो क्वेश्चन पूछा कि दादी सतयुग में अमृत वेला होगा, अगर होगा तो देवताएं कितने बजे उठेंगे और उठ के क्या करेंगे। दादी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में बताया कि सतयुग में अमृत वेला जरूर होगा, देवताएं सूरज निकलने से पहले जरूर उठेंगे, लेकिन 3:30 बजे नहीं उठेंगे, 4 बजे नहीं उठेंगे, सूरज निकलने से 1-1.5 घंटा पहले उठेंगे और उठ करके अपने महल में सैर करेंगे, नदियों पर सैर करेंगे, बगीचों में सैर करेंगे, क्योंकि वहां बगीचा कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं होती है, महल के अंदर ही बगीचा होता है, गार्डन होता है, नदी बहती रहती है, सब कुछ होता है। तो देवताएं भी अमृत वेला उठते हैं। हर युग में अमृत वेले का महत्व है। द्वापर में भी हमारे ऋषि मुनि गुफाओं में बैठ करके अमृत वेले उठ करके तपस्या करते हैं। और बाबा ने जब हम बच्चों को ब्राह्मण बनाया तो बाबा ने टाइम ही फिक्स कर दिया कि बच्चे अमृत वेले बाबा फ्री है, आप बाबा के पास आओ। दूसरा, बाबा ने कहा कि अमृत वेले बाबा हर बच्चों के पास आता है गुड मॉर्निंग करने के लिए। देखो सारी दुनिया भगवान को याद करती है, भगवान के तरफ नजर रखती है कि कहीं से उनका दीदार हो जाए, साक्षात्कार हो जाए, कहीं से एक आवाज सुनाई दे। और हम बाबा के बच्चे कितने लक्की हैं कि हमारे को गुड मॉर्निंग करने के लिए स्वयं बाप दादा हमारे पास आते हैं। सोचो कितने लक्की हैं। भगवान को गुड मॉर्निंग करने के लिए हमारे ऋषि मुनि पहाड़ों में कंदराओं में जाकर के बैठे हैं कि हम गुड मॉर्निंग करें, हमारी आवाज सुनाई दे। और भगवान हमारी आवाज सुनने के लिए, हमारी से गुड मॉर्निंग करने के लिए हमारे बेडरूम में आता है। आता है या नहीं आता है बोलिए। धीरे बोलते हो, लगता है कि किसी किसी के पास बाबा आता है, सबके पास नहीं आता है, सब कोई गुड मॉर्निंग नहीं करते हैं। तो देखिए हम कितने लक्की हैं, भगवान परम धाम छोड़ करके गुड मॉर्निंग करने के लिए हम बच्चों के पास आते हैं। हम कितना लक्की हैं, हमारा भाग्य कितना ऊंचा है, सोचो। और भगवान हम गुड मॉर्निंग करते हैं तो आप सोचो, आप माँ बाप बैठे हो, आपका बच्चा, छोटा बच्चा, आपका पोतरा, आप सुबह उठ करके सोफे पर बैठ करके, कुर्सी पर बैठ करके योग करते हो, या बैठे हो, या चिंतन कर रहे हो, या कुछ कर रहे हो, आपका पोतरा देखा कि दादाजी उठ करके सोफे पर बैठे हैं, कुर्सी पर बैठे हैं, तो वो उठ करके आकर के क्या करेगा, पांव को हाथ लगाएगा, तो आप क्या करेंगे, उसको गोदी में बैठा लेंगे, उसके सिर पर हाथ रखेंगे, उसको अपनी ब्लेसिंग देंगे, उसको प्यार करेंगे। करेंगे या नहीं करेंगे? लौकिक माँ बाप, हद के माँ बाप अगर अपने बच्चे को, पोतरे को इतना प्यार सुबह सुबह देते हैं, करते हैं, तो स्वयं परम पिता परमात्मा निराकार शिव बाबा, बाप दादा ब्रह्मा बाबा हम बच्चों को कितना प्यार करता होगा जब हम गुड मॉर्निंग उसके सामने उठ करके करते हैं। तो सुबह सुबह भगवान का प्यार मिल रहा है, ब्लेसिंग मिल रही है, दुआएं मिल रही है, उसके गोद मिल रहा है, उसकी पालना मिल रही है, उसका बरदानी हाथ हमारे सिर पर वो घुमा रहा है। सोचो कितने लक्की हैं। अब इस अमृत वेले को हम मिस कर सकते हैं। सारा युग द्वापर से लेकर के पुकारते आए, हे भगवान आओ दर्शन दो, अखिया हरि दर्शन की प्यासी, ये नयन ईश्वर के दर्शन करने की प्यासी है, गाते रहे। अब बाबा आया है, वरदान लुटा रहा है अमृत बेला, तो हम अगर सोए हैं, सुस्ती में हैं, झुटका खा रहे हैं, उसको कैसा लगेगा? ये बच्चा हमको द्वापर से पुकार रहा था, कितना गिड़गिड़ा रहा था, और आज हम आए हैं तो ये नींद कर रहा है, ये झुटका खा रहा है, ये उसको उमंग उत्साह नहीं है। सोचो कैसा बाबा को लगेगा। बाबा हमको सुबह उठते ही कितना वरदानों से भर देता है, शांति से भर देता है, शक्ति से भर देता है, प्यूरिटी से भर देता है, जो एक एक वरदान के लिए दुनिया तरसती है, भगत नयन बिछाए हैं, पुजारी इंतजार में है कब नयन खुले, दर्शन हो। और हम कितने लक्की हैं कि बाबा आकर के हमको वरदानों से भरपूर करता है। करता है या नहीं करता है? तो हम ऐसे अमृत बेले को कैसे हम निभा रहे हैं, कैसे चला रहे हैं, कैसे अमृत बेला हमारा हो रहा है, अपने आप से पूछें। इतना पावरफुल हो रहा है कि जन्म जन्मांतर का प्यास बाबा बुझाने आया है, जन्म जन्मांतर की आस को मिटाने आया है, भरपूर करने आया है, और हम किस तरह से उस आस को बाबा से ले रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। वो दाता दे रहा है और लेने के टाइम में हम अपने झोली को बंद करके बैठे हैं। सोचो, बुद्धि रूपी झोली को सील करके बैठे हैं, आंखें बंद करके बैठे हैं ताकि आंख मिलाएंगे तो वरदान मिल जाएगा। सोचो, निद्रा देवी हमारे ऊपर सवार है अमृत बेला। अरे अमृत बेला हमारा इतना उमंग उत्साह से हो, कौन मिला है, क्या दे रहा है, गुड मॉर्निंग करे तो ऐसे उछल करके करें, भाग्य खुल गया। आज किसी को, एक गरीब व्यक्ति को लॉटरी मिल जाए 10 लाख 1 करोड़ की, उसका चेहरा कैसा होगा, उसका चलन कैसा होगा। लिमिट 1 करोड़ 10 लाख 50 लाख, शायद 1 घंटा में चोर आए उसको लेकर के भी चला जाए, वो गरीब के गरीबी रहेगा, लेकिन मिलते ही सुनते ही उसका चेहरा कैसा खिल जाता है, उसके पांव जमीन पर नहीं लगते हैं। और हमको बाबा अविनाशी 10 करोड़ नहीं दे रहा है, 20 करोड़ नहीं दे रहा है, अरब दे रहा है, खरब दे रहा है, गिनती नहीं कर रहा है। बच्चे, प्यार के सागर, मास्टर प्यार का सागर बनो। सागर का कोई गिनती होता है तो मास्टर सागर बना रहा है, पवित्रता का मास्टर सागर बना रहा है, शांति का मास्टर सागर बना रहा है। कब? अमृत बेले। ऐसे अमृत बेले को हम ब्राह्मण मिस कर सकते हैं? हमारे डिक्शनरी में नहीं है, हम कभी इसको मिस ही नहीं कर सकते हैं। ऐसी प्राप्ति के बेला को हम तो इंतजार में रहें, 2 बजे उठ करके इंतजार करें कि कब 3 बजेगा, कब बाबा आएगा, हम उस इंतजारी में बैठे रहे। हमारी अमृत बेला सुबह से और रात को सोएं तब से ही इतना श्रेष्ठ संकल्प करें कि बाबा के आने के पहले हम इंतजार करेंगे, बाबा आओ हम गुड मॉर्निंग करें। हमारे बेडरूम में आकर के बाबा खड़े हो और फिर मैं आंख मलते हुए थोड़ा सा वो चादर से मुंह को बाहर निकालें और देखें कि अरे बाबा खड़े हैं, तो हम चादर फेंक करके और खड़े होकर के बाबा गुड मॉर्निंग नहीं। अरे हम बाबा को पहले से इंतजार करें कि बाबा आए, हम भाखी पहने उनके गले लग जाएं, ऐसे गुड मॉर्निंग करें। वाह, हमारा जन्म जन्म का प्यास मिट गया। ऐसे गुड मॉर्निंग करें, ऐसे बाबा से रूरियान करें, ऐसे बाबा से बातें करें। अमृत बेला बाबा फ्री है, भाग्य विधाता। हम तो यही सोचते आए हैं, सोच रहे थे पता नहीं माँ सरस्वती कहाँ हमारा भाग्य लिख रही होगी, कहाँ बैठ करके लिख रही होगी, पिताश्री ब्रह्मा बाबा हमारे तकदीर को पता नहीं कैसे लिख रहे होंगे, और वो हमारे ऊपर इतना प्रभावित हो गए, कुर्बान हो गए कि वो अमृत बेला कलम हमारे को ही थमा देते हैं, बच्चे अपना भाग्य लिखो। और हम उस अमृत बेले झुटका खाते रहें, नींद करते रहें, आधी नींद में हो आधी योग में हो तो भाग्य कैसा लिखेंगे। सोच लो, बाबा हमारे ऊपर इतना खुश है, मेहरबान है, उसको इतना हमारे ऊपर विश्वास है कि वो कलम थमा देता है, बच्चे अपना भाग्य तो लिखो ही लिखो, तुम मास्टर ब्रह्मा हो, तुम सृष्टि के क्या हो, पूर्वज हो, सब बच्चों का सबका भाग्य लिखो, दूसरों को भी भाग्य लिखने का कलम दे दिया है, सोचो अब उस समय हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए। कितना अलर्ट, कितना खुश, वाह मेरा भाग्य, वाह अपना तो भाग्य लिखने की हमको ये मौका मिला ही मिला है, दूसरों का भी भाग्य लिखने का चांस मिला है, तो हम कितना ना अच्छा भाग्य लिखे सबका। कैसे लिखेंगे, हमारे अंदर उमंग उत्साह होगा तब तो लिखेंगे, नहीं तो अपने भाग्य लिखते लिखते थक गए, क्या लिखें, कितना लिखें, कैसे लिखें, द्वापर में क्या चाहिए, त्रेता में क्या क्या चाहिए, कलयुग में क्या चाहिए, यही सोचते रहेंगे तो दूसरों का भाग्य कैसे लिखेंगे। इतना उमंग हो, कौन मिला है, क्या दे रहा है, क्या प्राप्ति हो रही है, इतना उमंग, नशा, ये कैसे नशा होगा, कैसे ये होगा। हमारा अमृत बेला से पहले हमारी अमृत बेला की तैयारी दूसरे दिन करें, जैसे कल अमृत बेला होने वाला है तो आज से तैयारी करें। सारा दिन हम कोई भी झरमुई झंगमुई में न जाएं, व्यर्थ चिंतन में न जाएं, क्योंकि भाग्य लिखना है ना, अपना भी भाग्य लिखना है, सारे विश्व की आत्माओं को भी भाग्य लिखना है, तो हमारे ऊपर कितनी बड़ी जवाबदारी है सोचो। हमारी बुद्धि की लाइन कितनी क्लियर होनी चाहिए बाबा से जो हम भाग्य लिखें, बहुत बड़ी जवाबदारी है। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा किसी का भाग्य लिख दिया, थोड़ा सा तो हम लिख दिया नींद में, लेकिन उस बेचारे को तो जिंदगी पूरा कल्प खत्म हो गया। कल्प कल्प की बाजी है, चार युगों का बाजी है, फिर बाबा संगम पर ही हमको मिलेगा अगले कल्प में, और कलम थमाएगा कि बचे कलम लो भाग्य लिखो। तो इतना हमारी जवाबदारी है, हम साधारण नहीं है, हम सिंपल नहीं है, हम सिंपल एक प्रवृत्ति मार्ग का नहीं है, हम विश्व की प्रवृत्ति को चलाने वाले हैं, हमारे को इतनी बड़ी जवाबदारी है। हम चार परिवार, हमारा चार है, चार बच्चे के माँ बाप हैं, 10 फैमिली हमारे परिवार में है, 10 का मालिक नहीं है, सारे विश्व का मालिक हैं। जैसा कर्म हम करेंगे, हमारे को देख करके सारा विश्व हमारे पीछे पीछे चल रहा है, सोचो कैसे कदम उठाना है। तो हमारा सारा दिन यही चिंतन हो, अरे आज का अमृत बेला मेरा बहुत अच्छा हुआ है, कल का अमृत बेला इससे भी अच्छा होगा, इससे भी अच्छा करेंगे, बाबा को छोड़ेंगे नहीं। कब, जब सारा दिन ज्ञान की चिंतन होगी तब न, जब सारा दिन बाबा से बातें करेंगे तब न, जब सारा दिन मंथन करेंगे तब न, सारा दिन 500 रूपों का चिंतन करेंगे तब होगा ना, या सारा दिन हम परपंच में लगे रहें, इधर उधर की बातों में लगे रहें, व्यर्थ चिंतन में लगे रहें, लोगों को देखने में लगे रहें। सोचिए, हम मिट्टी को, बाबा कई बार अव्यक्त मुरलियों में कहते हैं कि कई बच्चे हैं कि मिट्टी में उनको खेलना बहुत अच्छा लगता है, मिट्टी खाना अच्छा लगता है, बाबा हमको मिट्टी से ऊपर ले जा रहा है। एक बार तो बाबा ने कह दिया कि देवताओं का शरीर, मुरली याद है, गोल्डन है, तुम ब्राह्मणों का शरीर डायमंड है, तो बाबा हम बच्चों के शरीर डायमंड दिया है, और हम कहां मिट्टी में खेल रहे हैं, हम कहां मिट्टी देख रहे हैं, सोचो। हमको बाबा कितनी ऊंची नजर से देख रहा है, कितना ऊंची स्थान पर बैठाया है और हम कर क्या रहे हैं। अपने आप से बातें करें, देखिए क्लियरिटी होगा, क्लियर होता जाएगा और सारा दिन उसी मौलाई मस्ती में मस्त रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हमारा कारोबार बंद हो जाएगा, हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा, सारा दिन मौलाई मस्ती में रहेंगे तो सारा दिन बाबा को याद करेंगे तो बिजनेस घाटे में जाएगा। नहीं, हमने देखा है अज्ञानी को, भक्तों को देखा है, वो बिजनेस करने जाते हैं, दुकान खोलने जाते हैं। आप लोग भी जब ज्ञान में नहीं आए थे तो आप लोग भी शायद करते होंगे कि कोई काम करने के लिए जाते हैं तो मंदिर में माथा टेक करके जाते हैं। क्यों भाई? आ तो हम भगवान का आशीर्वाद लेकर के जाते हैं, आज सारा दिन प्रॉफिट होगा। करते थे या नहीं करते थे? दुनिया करती है या नहीं करती है? और जिसके साथ भगवान है, जिसके दुकान में भगवान बैठा है, उसका कितना प्रॉफिट होगा? सोचो, गिनती करने की बात है? नहीं। तो हमारी इतनी प्रॉफिट है, हम इतनी नशा में रहें, इतना उमंग में रहें, सारा दिन हमारा अमृत बेला रहे, खाली सुबह सुबह नहीं, सारा दिन अमृत बेला रहे, सारा दिन हम अपना भाग्य क्या, सारे विश्व का भाग्य लिखते रहें, जवाबदारी हो। भाई हम अपना तो लिखना ही लिखना है, बच्चों का भी लिखना है, परिवार का लिखना है, अरे सारे विश्व का लिखना है, तो कितनी बड़ी जवाबदारी है। हमारा कितना कनेक्शन बाबा से होनी चाहिए, क्या उतना कनेक्शन है? पूछे। जब इस तरह से सारा दिन चिंतन करेंगे, पांच स्वरूपों का अभ्यास करेंगे, उसमें खोए रहेंगे, तो आपका कारोबार जो 10 घंटा का है वो 1 घंटा में पूरा हो जाएगा, सारा दिन फ्री रहेंगे। जो टेंशन वाली है, जवाबदारी है, लेकिन आप फ्री होकर के मुस्कुराते रहेंगे, देखते रहेंगे और काम हो रहा है और अच्छा हो रहा है, कुछ नुकसान होने की मार्जिन नहीं है। क्यों? हमारे साथ भगवान बैठा है, 1000 भुजा वाला साथ बैठा है। 1 भुजा का सहयोग हम लेते थे, 1000 भुजा वाला साथ बैठा है तो उसकी नजर नहीं होगी? तो इसलिए हमारा अमृत बेला पावरफुल बनाने के लिए सारा दिन सुबह से शाम तक नाश्ते में बाबा के साथ ऐसे रू रिहान करें, ऐसे बातें करें, बाबा आप आओ, आपको हम नाश्ता कराएंगे, हमको सारा जीवन आपने खिलाया है, आज मैं आपको खिलाऊंगा, बुलाओ। नाश्ते पर बुला रहे हो, दोपहर को लंच में बुला रहे हो, रात को डिनर पर बुला रहे हो, जिस घर में 3 बार भगवान आता है जिस डाइनिंग टेबल पर, सोचो उस घर का माहौल कैसा होगा। जिस घर के सदस्य माँ बहने 5 बार बाबा को बुलाती है, बाबा हम फ्री हैं आप आओ, रू रिहान करती है, 500 रूपों का अभ्यास करती है, वो घर का माहौल कैसा होगा? वो घर मंदिर होगा या नहीं होगा? वो घर आश्रम होगा या नहीं होगा? वो घर आश्रम है। कोई आएगा काम के लिए आएगा, वो काम भूल जाएगा और उसको ऐसा वाइब्रेशन मिलेगा, कहेगा कि दीदी मैं 5 मिनट आपके पास बैठना चाहती हूँ, सुकून मिल रहा है, हमारी पीड़ा मिट गई, यहाँ आने से पता नहीं कितनी पीड़ा में मैं थी, कई बातें सोच कर आई थी आपसे सुनाने के लिए, आपसे देन लेन करने के लिए, और यहाँ आते मैं इतना रिलैक्स हो गई, इतना फ्री हो गई, सोच रही हूँ कि मैं किस लिए आई हूँ। हो सकता है या नहीं हो सकता? ब्रह्मा बाबा ने किया या नहीं किया? मम्मा ने किया या नहीं किया? हमारी दादियों ने किया या नहीं किया? ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी आप लोगों ने पढ़ा होगा, देखा तो नहीं है। बाबा के पास बच्चे आते थे, जैसे अभी आप लोग भट्टी करने आए हो, बाबा के पास ग्रुप आता था, क्वेश्चन लेकर के आता था, 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन परिवार की, बिजनेस की, बच्चों की, रिश्तेदारों की, कि ये बाबा से पूछेंगे। जब आकर के तैयार होकर के बाबा से मिलने आते थे, बाबा के सामने बैठते थे, बाबा दृष्टि देता था और शरीरी हो जाते थे, सब भूल जाते थे। बाबा रूढ़ियान करता था, लास्ट में पूछता था, बच्चे कुछ क्वेश्चन है? नहीं बाबा, कोई क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन का लिस्ट लेकर आए हैं, और बाबा के दृष्टि पड़ते सारी क्वेश्चन समाप्त। बाबा ने किया ना, तो उसी तरह हम बाबा के बच्चे इतना पावरफुल अमृत बेला करें, इतना भरपूर रहें कि कोई भी कैसी भी समस्या लेकर के हमारे पास आए, हम उसको दृष्टि दें और उसकी समस्या मिट जाए, वो हल्के हो जाए, उसको वाइब्रेशन मिले, अरे यही सब कुछ मिलने वाला है, फील हो। तो इस तरह से हम सारा दिन ये करेंगे, शाम के टाइम में नुमा शाम का योग पावरफुल करें, रात को सोने से पहले हम आधा घंटा मुरली पढ़ें, अव्यक्त मुरली पढ़ें। अव्यक्त मुरली पर हम क्यों जोर दे रहे हैं कि अव्यक्त मुरली एक एक टॉपिक पर होती है, और साकार मुरली तो बाबा सागर था ना, एक टॉपिक दूसरे टॉपिक 10 टॉपिक एक एक की मुरली में आ जाता है। तो हम उस पर चिंतन करें, मनन करें, और बहुत पावरफुल हम योग करें, सोने से पहले आधा घंटा 15 मिनट बाबा से रूढ़ियान करें, बाबा हम आपके पास आ रहा हूँ, आ रही हूँ, आपके गोदी में हम सो जाएंगे और सुबह अमृत वेले उठ करके आपसे रूढ़ियान करेंगे। देखो नींद कैसे आती है, स्थिति कैसे बनती है, और सुबह आप अमृत वेले उठेंगे कितना पावरफुल होगा, थोड़ा विजुलाइज करिए, चिंतन करिए, इतना पावरफुल होगा। हाँ हम मानते हैं भाई दुनिया अति के तरफ जा रही है, पापाचार भ्रष्टाचार अति के तरफ जा रहा है, बच्चे आपके बड़े हैं, स्कूल कॉलेज में हैं, उनको स्कूल कॉलेज का छाप लग जाता है, क्योंकि सारा दिन तो आपके पास नहीं है, वो नाश्ता करके स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज का वातावरण अलग है, दुनिया की वातावरण अलग है, उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, मैं मानता हूं, लेकिन आप अपने घर को इतना चार्ज करके रखो, बच्चा आता है कॉलेज से, वो नाश्ता करेगा, नाश्ता इतना पावरफुल, बाबा को भोग लगा करके ब्रह्मा भोजन तैयार करके रखो, उस बच्चे को खिलाओ, रिश्तेदारों को खिलाओ, संबंधियों को खिलाओ, उनका बुद्धि बदलेगा या नहीं बदलेगा, सोचो। दुनिया वाले कहते हैं आज इस कैंपस के अंदर आते हैं उनकी बुद्धि चेंज हो जाती है, गृहस्थियों की बात छोड़ो, यहाँ संत सम्मेलन कई हुआ, अभी अभी संत सम्मेलन हुआ, बड़े बड़े संत आके कहते हैं कि यहाँ तो स्वर्ग है, यहाँ तो साक्षात्कार भगवान का कारोबार चल रहा है। कैसे चल रहा है, भगवान कहाँ है? एक एक व्यक्ति को, एक एक भाई बहनों को बुद्धि दाता उसके बुद्धि को अपने में लगा रखा है, तो हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी, उमंग होगा, उत्साह होगा, लगन होगा, तब तो हमारी डोरी खींचेगा। या खाली हम गाते हैं मेरी डोरी तेरे हाथ, एक ये भी गीत है ना, मेरी डोरी तेरे हाथ, डोरी तो हमने दे दिया है, काम हम खुद कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम हुआ तो हम मनुष्यों को याद करते हैं, सिर दर्द हुआ डॉक्टर को याद करेंगे, संबंधियों को याद करेंगे, पड़ोसियों को याद करेंगे, कोई एक टैबलेट दे दे, इधर उधर पूछेंगे, भाई तुम्हारे पास कोई पेन कूलर टैबलेट है? अरे सिर दर्द हुआ, बाबा के पास चले जाएं, वो सुप्रीम सर्जन है, वो दृष्टि देगा, आपका सिर कूल हो जाएगा, टेंशन फ्री हो जाएगा। आपको कोई तकलीफ है, आप बाबा को आवाहन करो तो सही, सुप्रीम सर्जन को प्रेजेंट होने से आधी बीमारियां खत्म हो जाएगी। हमारी दादी जानकी कहती थी, वो जब यज्ञ में आई तो दादी जी को बाबा ने नर्स बनाया, 14 साल तक कोई बाहर के डॉक्टर कदम नहीं रखा, 400 भाई बहने, बुजुर्ग भी थे, यंग भी थे, बच्चे भी थे, क्या वो बीमार नहीं पड़े होंगे? बीमार थे, लेकिन बाबा आता था, दादी जाती थी, बाबा फलाने को बुखार है, अच्छा बच्ची बुखार है, चलो बाबा चलता है, बाबा गया, दृष्टि दिया, सिर पर हाथ रखा, बुखार खत्म। पावर, तो क्या वो पावर दादी के टाइम में था, बाबा के टाइम में था? वो पावर उससे ज्यादा पावर अभी है। आप कहेंगे कैसे? छोटे बच्चे होते हैं, परिवार का नजर छोटे बच्चे पर अधिक होता है, होता है या नहीं होता है? अनुभवी बैठे हैं या नहीं बैठे हैं? होता है ना, छोटा बच्चा हो, 1 साल का, 6 मास का, सबका नजर होगा। ये नहीं कहेंगे कि ये चाचे का लड़का है वो ध्यान दे, चाची ध्यान दे, ताऊ जी का लड़का है ताऊ जी ध्यान दे, नहीं, किसका भी लड़का है सब प्यार करेंगे, सब ध्यान देंगे, देते हैं ना। तो जब हम छोटों को ध्यान देते हैं तो हमारा माँ बाप बाबा, ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा, हमारी दादियां, हम छोटे बच्चों को ध्यान नहीं दे रहे हैं? सोचो, दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? हाँ ना बोलो तो सही, दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं? हमने देखा है, पहले पांडव भवन में 70 की बात सुना रहा हूं, 72 की बात सुना रहा हूं, 73 की बात सुना रहा हूं, कोई नया प्रोजेक्ट करना होता था तो हमारी बड़ी दादी, दादी प्रकाशमणि जी, बाबा को बुलाती थी, पूछती थी, गुलजार दादी बाबा के कमरे में, गुलजार दादी, दीदी और दादी, यीशु दादी, चार ही मूर्तियां होती थी, बाबा आए हुए हैं, एक एक डायरेक्शन देते थे, ऐसे करो बच्ची, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, मेरे सामने की बात है। आज दादी गुलजार जी भी नहीं है, हमारी बड़ी दादी नहीं है, कोई भी दादी नहीं है, और बाबा किसके द्वारा डायरेक्शन दे? हर बच्चे में प्रवेश होकर के हर बच्चे से अपना काम करा रहा है। बड़े बड़े काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? रिट्रीट सेंटर बन रहा है या नहीं बन रहा है? कौन आकर के डायरेक्शन दे रहा है? बाबा करा रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर रहे हैं, सेवाएं कर रहे हैं, कौन डायरेक्शन दे रहा है? सोचो, बाबा हर योग्य बच्चे में प्रवेश होकर के उसके बुद्धि की लाइन क्लियर करके, बच्चे यही करना है, इस सेवा से बाबा की प्रत्यक्षता होगी। और आज बच्चे कितने मकान हो गए, जो बाबा के टाइम में अपना मकान सेंटर बहुत कम थे, दादी के टाइम में बहुत कम रिट्रीट सेंटर थे, दादी के जाने के बाद कितने रिट्रीट सेंटर हो गए, हर जोन में 2-3 रिट्रीट सेंटर सुनते हैं, हर जोन में अपना अपना मकान हो गया सुनते हैं, कोई भी बड़ा शहर हो, कौन कर रहा है, कौन प्लानिंग दे रहा है? बाबा हर बच्चों में, हर बच्चों से करा रहा है। तो हम प्यारे हो गए कि नहीं हो गए? छोटे सुभान अल्लाह हुए या नहीं हुए? तो हम सुभान अल्लाह की बुद्धि की तार कितनी बाबा से जुड़नी चाहिए, हमारी बुद्धि कितनी बड़ी जवाबदारी है, छोटे काम मोटे जैसा कर रहे हैं, तो हमारी जवाबदारी कितनी है, बाबा हमारे ऊपर कितनी जवाबदारी रखा है, सोचो, है या नहीं? इतनी जवाबदारी समझ कर अमृत वेले बैठते हैं, उमंग से बैठते हैं, उत्साह से बैठते हैं, लगन से बैठते हैं, सारे विश्व को सकास देना है। सारी दुनिया शांति के लिए भिखारी है, करोड़पति है, घर में शांति नहीं है, उसके मन में शांति नहीं है, अरबपति है, हजारों मील है, नौकर चाकर हैं, शांति नहीं है। और शांति के सागर परमात्मा सुबह गुड मॉर्निंग करके हमारे को शांति की शक्तियां भर देता है। या गुड मॉर्निंग करते हैं तो कहते हैं, बाबा कभी कहा क्या, बच्चे आज ढेर बच्चे आने वाले हैं, तुमको आज 1 किलो ही शांति देंगे, कभी ऐसा कहा? बाबा भरपूर कर रहा है, बच्चे इतनी शांति लो, इतनी शांति अपने आप में भरो, सारे विश्व में बांटो, बाबा की आस है ना हम बच्चों से, इसीलिए तो हम बच्चों को फरिश्ता बना रहा है। देवता तो हम सतयुग में बनेंगे, फरिश्ता किस लिए बना रहा है? कि हम अपने संकल्प से, वाइब्रेशन से सारे विश्व की आत्माओं को, प्रकृति को, सबको हम सुख शांति से धन्य धन्य कर दें। करने के लिए कौन आएगा? बाबा जाएगा क्या? हम बच्चे जाएंगे। बाबा कहा विनाश के टाइम में बच्चे आप लोग एक एक बच्चे फरिश्ता के समान हुए होंगे और सबको सकास देंगे। बाबा की महावाक है ना, कब करेंगे? अंतिम समय आ गया है, हम प्रैक्टिस अभी नहीं करेंगे तो विनाश के टाइम हम कर सकते हैं? आज एक व्यक्ति मर जाता है, शरीर छोड़ देता है, कितना दुखद वातावरण हो जाता है, घर का वातावरण कैसा होता है। और उस समय तो परिवार के परिवार साफ हो जाएंगे, हजारों लोग शरीर एक साथ छोड़ेंगे, हम सकास दे सकते हैं। सोचो, अभी से अभ्यास करना है। मिरवा मौत मल्लू का शिकार, सारी दुनिया ये हो रही है, हम साक्षी होकर के उनके आत्मा को शांति का दान दे रहे हैं। तो भाग्य विधाता ये अमृत बेला हम बच्चों के लिए रखा है, भक्तों के लिए तो बाद में टाइम देता है। इतना अमृत बेला का महत्व हो, इतना अमृत बेला के लिए हमारे अंदर लगन हो, जवाबदारी समझे, मुझे करना क्या है, बाबा ने हमको किस लिए इतनी पालना दिया है, इतना हमको योग्य बना रहा है, क्या मैं वो काम कर रहा हूँ, कर रही हूँ? सोचो, इतनी जवाबदारी, इतनी लगन, इतना उमंग, बस कुछ नहीं दिखाई दे, हमारा कारोबार बाबा खुद करेगा, हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बाबा कर रहा है, हम बच्चों से करा रहा है। चिंता न करें, कुछ हो जाए, बीमारी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैंने तो देखा, हम दादियों को देखा है, सुबह हमारी बड़ी दादी का, दीदी का उम्र बड़ा था, बीपी शुगर था, उन दिनों में यज्ञ में कोई डॉक्टर नहीं था, मैं था, तो दीदी हमको बुलाती थी रात को 10 बजे, भाऊ मन भाई को, सिंधी में दीदी सिंधी शब्द अधिक यूज करती थी, बोलती भाऊ मेरा बीपी जरा चेक कर दो। मैं बीपी दीदी का चेक करता था और कहता था दीदी थोड़ी बीपी हाई है, सुबह आप उठिए नहीं, अमृत बेले रेस्ट करिए। तो दीदी क्या जवाब देती हैं, भाऊ आपकी बात हम नहीं मानेंगे, नहीं सुनेंगे, अमृत बेले बाबा जो कहेगा वो मैं करूंगी। और मैं देखता था कि मेरे से पहले दीदी हिस्ट्री हॉल में जाकर के योग करा रही है, मैं पीछे आ रहा हूं। सोचो अमृत बेले का कितना महत्व। नहीं तो आज डॉक्टर कह दे कि नहीं आपको 5 दिन रेस्ट करना है, भाई बोलो नहीं, डॉक्टर ने हमको 5 दिन रेस्ट दिया है, हम क्लास में नहीं आऊंगी, मुरली नहीं सुनूंगी, हम सेवा नहीं करूंगी, अमृत बेला नहीं उठेंगे, डॉक्टर ने 5 दिन मेरे तबीयत के अनुसार रेस्ट दिया है। सोचो हमारे दादियों ने अमृत बेले का कितना महत्व रखा है। हमने बड़ी दादी को देखा, उनको बैकेक होता था, पट्टा बांध करके हिस्ट्री हॉल में आकर के योग कराती थी, कभी अमृत बेला नहीं मिस किया। बड़ी दादी बाहर सेवा में बहुत जाती थी, रात को लेट आती थी टूर के अनुसार, बारह बजे आ रही है, लेकिन साढ़े तीन बजे आकर के योग कराती थी, योग करती थी हिस्ट्री हॉल में, आंखों देखा हाल। तो दादियों ने अमृत मेले का महत्व कितना समझा। हमारी बड़ी दादी फ्रांस में नहीं जाती थी, लेकिन रोज आकर के मुरली में या हम लोगों से बैठती थी तो कहती थी, अरे भाई मैं क्या करूं, बाबा मेरे को सोने नहीं देता है, सुबह वह उठाता है, बेटी उठो ये काम करना है। और हम लोगों को बताती थी, अभी बाबा ने कहा है ये काम करना है, क्या करें, करोगे या नहीं करोगे। भगवान दादी को कहा, दादी हमारे को कर रही है, हम ना कहेंगे क्या। जी दादी यही काम करना है। अमृत वेले का महत्व हमारी दादियों को कितना था। हमारी दादी जानकी की बात सुनाऊं, वो हमारे सन्यासी यहां हमेशा कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, हरिद्वार से, ऋषिकेश से, सारे भारत से, बनारस से महात्माएं आते हैं। एक बार महात्माओं ने, ऋषिकेश हरिद्वार के महात्माओं ने कहा कि दादी आप जब बुलाती हो हम लोग भागे आ जाते हैं, इस बार हरिद्वार में हम कॉन्फ्रेंस संत सम्मेलन करेंगे, आपको उद्घाटन करने आना होगा। दादी बोली कि जी हुजूर। और दादी गई उनके निमंत्रण पर उद्घाटन करने। उद्घाटन बहुत अच्छी तरह से किया, सारे संतों में उमंग उत्साह भर दिया, सब खुश हो गए सारे संत। रात का टाइम, वहां प्रेम दीदी होती थी देहरादून में, उनके पास दादी ठहरी। रात को उठी, बड़ी उम्र थी, रात को उठी गिर गई, 8 रिब्स टूट गया, फ्रैक्चर। पता लगा, दादी को ले आए अहमदाबाद में, एमआरआई और एक्सरे करा करके डॉक्टर को दिखाया, सब करते कराते रात को 9 बज गया। दादी पूछती है कि डॉक्टर ने क्या कहा, तो दादी डॉक्टर ने कहा है कि ये 8 रिब्स टूटा हुआ है, आपको रेस्ट करना है, क्रैप बैंडेज लगा दिया है और इसकी सर्जरी नहीं हो सकती है, प्लास्टर नहीं हो सकता है, क्रैप बैंडेज लगाया है, आपको 3 महीना रेस्ट करना है। बाबा का सीजन था, 25,000 भाई बहने आए थे। दादी बोलती है कि ठीक है 3 महीना रेस्ट करना है ना, अभी अपनी एम्बुलेंस ले आओ और हमको ले चलो शांति वन। क्यों, 25,000 भाई बहने आए हैं, वो कहेंगे कि दादी हॉस्पिटल में है, हम वहां रहूंगी, शक्ति भवन में रहूंगी, तो उनको संतुष्टि होगी, दादी आ गई शक्ति भवन में है। आगे सुनिए, 2 बजे रात को हम लोग यहां पहुंचे, दादी शक्ति भवन में चली गई, रेस्ट में चली गई, हम लोग अपने रूम में चले गए। 3:30 बजा, हंसा बहन को दादी बोलते कि हंसा 3:30 बज गया है, अब मेरे को उठा करके बैठाओ, फ्रैक्चर है, 2 बजे रात को आई है, अमृत वेला मिस नहीं करना है। सोचो दादियों को कितना महत्व था अमृत वेले का। एक एक दादी की क्या बात सुनाए। हमारी दादी गुलजार 3 साल गामदेवी में रही, एक छोटे से सेंटर पर, एक छोटे से रूम में, एक दिन अमृत बेला वो मिस नहीं दादी ने किया। 3 बजता था, नीलू बहन को उठाती थी, नीलू उठो मेरे को बैठाओ, यज्ञ का चक्कर लगाती थी। एक दिन क्या हुआ, नीलू बहन को बता रही है, भाई यज्ञ में ये जमीन का कुछ ये है, उसको बताओ, उसको ठीक कराओ। हाँ, 3 साल से वहां यज्ञ की चिंता है, कब आकर के यज्ञ का सैर करती है, देख रही है, एक एक बच्चे को ध्यान दे रही है, यज्ञ को ध्यान दे रही है, बैठी है अपने कुटिया में बॉम्बे में। सोचो अमृत बेला बाबा के साथ, सारा संसार उनके नजरों में था, कहां क्या हो रहा है वहां डायरेक्शन मिलता था। कई डायरेक्शन दादी ने हमारी नीलू दीदी के साथ दिया। तो कहने का भाव, हमारी दादियों को अमृत बेले का इतना महत्व था। कभी उन्होंने अमृत वेला मिस नहीं किया। आंखों देखी हाल, तबीयत ठीक नहीं है, टांगे नहीं चल रही है, दीदी उम्र बड़ी थी, घुटने से नहीं चला जाता था। लच्छू दादी का हाथ पकड़ करके, सर्दी हो गर्मी हो बरसात हो, हिस्ट्री हॉल में जाकर के योग कराना है। सोचो, भाग्य उनका नहीं बनेगा, किसका बनेगा? विधाता वो देख रहा है ना, बच्चे कौन कैसे योग कर रहे हैं, कैसे ये कर रहे हैं। तो इतना हमारा, अगर इतना भाग्य बन रहा है, 84 जन्मों का भाग्य हम अभी बना रहे हैं अमृत वेले, सोचो। चारों युग का भाग्य बना रहे हैं, खाली सतयुग त्रेता का भाग्य नहीं बना रहे हैं, द्वापर का भी भाग्य बना रहे हैं, कलयुग के अंत तक का भी भाग्य बना रहे हैं। कब? इस थोड़ी सी छोटी संगम युग पर हम भाग्य बना रहे हैं, अमृत बेला भाग्य बना रहे हैं, भाग्य भगवान बांट रहा है। कईयों को ये होता है तो कहते हैं कि अरे मेरे भाग्य में यही था। लोग कहते हैं भगवान भाग्य बांट रहा था तो तुम सोए हुए थे क्या? सोच लो, वो समय चल रहा है, भगवान भाग्य बांट रहा है। हम अपने आप से पूछें, हम अपना भाग्य कितना बना रहे हैं, कितना शरीरी बनने का अभ्यास कर रहे हैं? हम अमृत वेले उठें, शरीर से बाबा को गुड मॉर्निंग करेंगे? नहीं, सारा दिन अशरीरी बनने का अभ्यास रहेगा तो अमृत वेले बाबा से उठेंगे तो शरीर बिस्तर पर, शरीर अलग और हम अशरीरी होकर के बाबा के गोदी में जाएंगे। आत्मा जाएगी ना, ये शरीर तो बाबा के गोदी में नहीं जाएगा। सोचो, तो इतना सारा दिन हम अभ्यास करते हैं, सारा दिन धुन में रहते हैं, सोचो इतना लगन है, एक एक सेकंड हमारा कैसे बीत रहा है, कितना ईश्वरीय मस्ती में बीत रहा है, सोचो। इतना हमारे को मस्ती चाहिए, हमारी दादियों को और दादियों को अनुभव सुनो। 4 बार 5 बार मुरली पढ़ती थी, 6 बार मुरली पढ़ती थी, यज्ञ चलाती थी, इतना व्यस्त होते हुए भी 6 बार मुरली पढ़ने का टाइम निकालती थी। हमने दादी जानकी को देखा, जब उठती थी उनके हाथ में मुरली होता था, उनसे कोई कारोबार के लिए जाते थे मुरली पढ़ रही है। सोचो कितना महत्व, जबकि साकार के सामने उन्होंने ये मुरलियां सुना हुआ उनका है, बाबा साकार में उनके सामने सुनाया है ना, फिर भी उनको कितना महत्व था। तो क्या इतना महत्व हमको मुरली का है, ईश्वरीय ज्ञान का है, ईश्वरीय नियमों का है, श्रीमत का है? सोचो, ऐसा ही सीधा अमृत वेला हमारा ये हो जाएगा पावरफुल। हर सेकंड, हर कदम हम कितना श्रीमत को पालन कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। जितना जितना हम श्रीमत को पालन करेंगे उतना हमारा बुद्धि का जो कनेक्शन होगा बाबा से होगा। हर कदम पर तकलीफ होगी लेकिन वो तकलीफ तकलीफ नहीं होगी, बाबा बैठा है ना, उसके लिए कर रहे हैं, उसके श्रीमत पर कर रहे हैं ना, तो वो जवाबदार है। आप अपने बच्चे को दुकान पर भेजते हो, ये चीज लेके आओ बेटा, ये सब्जी लेके आओ, जब तक वो आता नहीं है तब तक आपका ध्यान कहाँ होता है? बच्चे पर है, अभी तक आया नहीं, घड़ी देखते रहेंगे। हमको बाबा ने सेवा पर भेजा है तो हमारे ऊपर उसका ध्यान नहीं है? सोचो, हम श्रीमत पर चलेंगे तो ध्यान होगा ना। माँ बाप सब्जी खरीदने के लिए भेजा है, सामान खरीदने के लिए भेजा है, हम कहीं और घूमने चले गए, कोई और कर्म करने चले गए, सोचो कुछ और कर रहे हैं। तो इसलिए ये हमारा संगम युग, ब्राह्मण लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका कोई हिसाब नहीं है। किसी शब्दों में हम इसको पूरा नहीं कर सकते हैं, इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट समझ करके हमको हर कदम उठाना है, हर संकल्प करना है। और ये जरूर अपने अंदर रखना है कि ये कल्प कल्प का नूद हो रहा है, शूटिंग हो रही है। हम इस मिट्टी का फोटो खिंचाते हैं तो कितना अलर्ट, कितना स्माइल होके खिंचाते हैं, हमारा फोटो खराब ना हो। और ये 84 जन्मों का जो फोटो खींच रहा है, शूटिंग हो रही है, सोचो इतना अटेंशन। साधारण लाइफ नहीं है, साधारण बेला नहीं है, ये अमृत बेला, 24 घंटा अमृत बेला है। समय हो गया, मैं पूरा करता हूँ। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।